ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, డైమండ్ మార్నింగ్. ఆవాజ్ ఊంచి నహీ హుయి. ఆజ్ హమ్ సభీ ఇస్ రాజయోగ శిబిర్ కే ఫస్ట్ సెషన్ కే లియే ఏకత్రిత్ హుయే హై. బహుత్ సుందర్ విషయ హై అప్నే ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వ కీ పహచాన్, యూ కహ సక్తే హై ఆత్మ ఖోజ్, సెల్ఫ్ డిస్కవరీ. కహతే హై ఖుద్ కీ నా కీ పహచాన్ బడీ భూల్ యహ హుయీ, ఖుదా తలాష్ మే వర్షో ఖరాబ్ కియే హమ్నే. క్యోంకి ఖుదా కీ తలాష్ సే పహలే ఖుద్ కో తలాష్నా, ఖుద్ కో సమజ్నా, ఖుద్ కో పహచాన్నా బహుత్ జరూరీ హై. వహీ జిందగీ మే చల్నే కా ఏక్ సహీ రాస్తా హై. యూ చల్నా తో హమ్ ఏక్ దో వర్షో మే సీఖ్ జాతే హై, లేకిన్ జీవన్ మే కైసే చల్నా హై ఉస్కో సీఖనే మే హమే పూరీ జిందగీ లగ్ జాతీ హై. సబ్కే సాథ్ కైసే చల్నా హై ఉస్కే లియే యే ఖుద్ కీ పహచాన్ ఏక్ బహుత్ మహత్వపూర్ణ విషయ హమ్ సబ్కే బీచ్ మే లేకర్ కే ఉపస్థిత హై హమారే ఆదరణీయ శీలు దీదీ జీ, జిన్కో ఆప్ రాత్రి మే భీ మిలే ఔర్ సునా భీ. హమారే యజ్ఞ కే అందర్ దాదియో కే బాద్ మధుబన్ హెడ్ క్వార్టర్ మే ఆప్ హమారే సబ్సే సీనియర్ దీదీ జీ హై. హమ్ సబ్ కర్తవ్య ధ్వని సే ఆప్కా హార్దిక్ అభినందన్ కర్తే హై, స్వాగత్ కర్తే హై. ఆప్కా దిల్ హై సాఫ్, మీఠీ జుబాన్, ఆప్కో కభీ నహీ హోతీ హై సేవా మే థకాన్. ఆప్నే సంభాలీ హుయీ హై రాజయోగ శివరో కీ కమాన్, వో హై ఆప్ హమారే మీఠే శీలు దీదీ జీ మహాన్, శీలు దీదీ జీ మహాన్. తనకో హమ్ బహుత్ సవార్తే హై అభీ భీ, ఆప్ సబ్ నహా ధో ఎక్సర్సైజ్ కర్కే పూరా సజ్ ధజ్ కర్కే జహాన్ పహుంచే హై. ధన భీ కమానే మే హమ్ సబ్ బహుత్ హుషియార్ హై, లేకిన్ ఆజ్ హమ్ సీఖేంగే కీ అప్నే మన్ కో కైసే శృంగారనా హై, కైసే సవారనా హై, కైసే నిఖారనా హై, జో కీ హమారే ఆధ్యాత్మిక అస్తిత్వ కా ఏక్ బహుత్ అహమ్ హిస్సా హై. తో అభీ మే నివేదన్ కరుంగీ ఆదరణీయ శీలు దీదీ జీ కో.
ఓం శాంతి. రాజయోగ్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సశక్తీకరణ, इस विषय को लेकर यहाँ यह 5 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी भाग ले रहे हैं. जब आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात आती है तो उसमें पहले हमें आध्यात्मिक शब्द को समझना होगा. आध्यात्मिक शब्द में ही इसका अर्थ भी है आध्यात्मिक, अर्थात आत्मा का अध्ययन, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं. जिसमें आत्मा का अध्ययन हो, धर्म का अध्ययन तो हर एक अपने अपने धर्म अनुसार करता है, लेकिन आध्यात्मिकता धर्म से बहुत ऊंची चीज है. आज धर्म के नाम पर हम हिंसा भी देखते हैं, धर्म के नाम पर युद्ध भी चले हैं, धर्म के नाम पर बहुत कुछ दुख भी उठाया है. लेकिन अगर हम ये समझ लें कि धर्म का सही अर्थ तो जीवन की धारणा है, तो हम उसको आध्यात्मिकता से मिला सकते हैं. अगर धर्म को केवल बाह्य आडंबर समझते हैं या केवल शारीरिक रूप में देखते हैं, भौतिक रूप में देखते हैं, तब ये आज इतनी सारी समस्याएं धर्म के नाम पर भी चल पड़ी है वो हो रही है। अगर इनसे हम ऊपर जाते तो आध्यात्मिकता के महत्व को हम समझेंगे, कैसे अध्यात्म हम सबको मिलाता है। भारत में हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो वैसे तो धर्म शब्द आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर भाई भाई जिस किस नाते से हैं, कोई ब्लड रिलेशनशिप तो है नहीं। वैसे अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो हम ये मानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हर एक को अपनी अपनी मान्यता अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार उसका पालन करने का अधिकार है। लेकिन जब भाई भाई शब्द कहते हैं अब इसमें आध्यात्मिकता आ जाती है। भाई भाई इस हिसाब से हैं क्योंकि पिता एक है, पिता एक होने के कारण हम भाई भाई हैं। तो इसमें आध्यात्मिकता आ जाती है क्योंकि आत्मा के अध्ययन के साथ साथ परमात्मा के अध्ययन का अध्ययन भी आध्यात्मिकता का ही विषय है। आत्मा के नाते से हम सब भाई भाई हैं क्योंकि एक पिता परमात्मा की संतान है। तो आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन, फिर आत्मा और परमात्मा को समझने के बाद हम ये मानते हैं कि परमात्मा ने आत्मा को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, तो कर्म का ज्ञान भी आध्यात्मिकता में आता है। कौन सा कर्म करें, कौन सा न करें, कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा पाप है, कौन सा पुण्य है, ये सब आध्यात्मिकता में आता है। और जब ये बात हम समझ लेते हैं तो फिर चौथा विषय आध्यात्मिकता का है समय की पहचान। किस समय हम कौन सा कर्म करें? कई बार कर्म तो अच्छे होते हैं लेकिन समय अनुकूल नहीं होता है। रात का समय सोना होता है, दिन का समय कार्य करना होता है, परंतु कोई व्यक्ति दिन को सोता रहे और रात को जागता रहे, दोनों कोई गलत नहीं है, जागना भी कर्म है सोना भी कर्म है, लेकिन समय देखना होता है। रात को जागते रहे और दिन को सोते रहे तो कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है, रात को खाता रहे और दिन को उपवास रखे, ये कौन सा व्यक्ति है, दिन में खाना होता है रात को थोड़ी खाना होता है। तो सब उल्टा चलता है, भले कर्म गलत नहीं है। तो हम देखते हैं कि समय का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। बीज भी समय पर बोया जाए तो फसल भी समय पर मिलेगी, अगर समय पर नहीं बोया बीज हम कहाँ फसल पाएंगे। इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये सब आध्यात्मिकता में आता है। तो हमारा जीवन अगर इस अनुसार चलता है तब हम कहेंगे जीवन जीने की कला आ गई। जीवन तो सभी जी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जीवन जीना, सांस ले रहे हैं जीवन जीना है, लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं? अगर जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफें हैं, विघ्न है, समस्याएं हैं, बंधन है, रुकावटें हैं, बहुत सारी ये नेगेटिविटी है, क्रोध है, ईर्ष्या है, नफरत है, वैर दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, न जाने क्या क्या हथकंडे इंसान अपनाता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो अगर ये सब जीवन में बातें हैं तो ये जीवन जीवन थोड़ी है, ये जीवन तो इसमें क्या परिणाम होगा, दुख अशांति ये सब होंगे, तो वो जीवन अभिशाप बन जाता है। लेकिन जीवन प्रभु प्रसाद है, प्रभु वरदान है। कबीर ने कहा मानव जीवन हीरे समान है, लेकिन कहीं हम इसे कौड़ी बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। कौड़ी बदले कैसे गंवाते हैं? जब जीवन का में मूल्य नहीं है। अगर जीवन में मूल्य नहीं है तो जीवन का भी मूल्य नहीं है, ये भी हम समझें। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो क्या, चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हम इसमें एक और एडिशन कर देते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ गया पर एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए भी गया। क्योंकि धन तो हाथों की मैल है, वो चढ़ती है उतरती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर धन गया तो, और धन आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चला भी जा सकता है, देर नहीं लगती है। पर स्वास्थ्य गया कुछ गया, क्योंकि अगर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ता है तो चलो वापस भी आ जाए पर वो समय लेता है। पर चरित्र गया तो आत्मा पर दाग लग जाता है, स्वास्थ्य गया चलो ऑपरेशन कराना पड़ा तो शरीर पर घाव आया, ऑपरेशन हुआ, फिर वो मिट भी जाएगा लेकिन कुछ सालों के बाद। पर चरित्र गया तो आत्मा पर दाग लग गया और वो तो आत्मा के साथ जाएगा। इसलिए जीवन हमारा कैसा हो, इसलिए कबीर ने बहुत सुंदर ये भी कहा कि कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जग हंसा। बच्चा पैदा होता है जग हंसता है, पर बच्चा तो रोता है, नहीं रोता तो भी जबरदस्ती रुलाते हैं ना, ताकि आवाज निकले। परंतु ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। तुम हंसो क्योंकि आपने जीवन को संवारा, सफल किया, अब आगे भी आपका बहुत, आपकी यात्रा सफल ही होगी, जहां भी जाएंगे सफल ही होंगे, क्योंकि आत्मा अपने साथ कर्म ले जाती है और तो कुछ नहीं चलेगा। तो इसीलिए उसके लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आध्यात्मिकता के अंतर्गत ही ये योग आता है। योग ही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। योग केवल शारीरिक आसनों का ही दूसरा नाम नहीं है, कहीं भी गीता में आसनों का वर्णन नहीं है, पर योग का वर्णन तो हर चैप्टर में है। तो योग क्या चीज है और फिर उसमें राजयोग क्या चीज है, क्योंकि भगवान ने राजयोग सिखाया है, भगवान के महावाक्य हैं, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस योग के द्वारा तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होंगे। योग कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम योग है। बहुत सारी बातें हैं गीता के अंदर योग के बारे में, लेकिन आज कैसी बड़ी विडंबना है कि लोग केवल कुछ शारीरिक व्यायाम को ही योग समझने लगे हैं। और कई बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई ये हमारे से कहां योग वोग होगा, अभी तो बूढ़े हो गए, ये तो जवानों का काम है, टांग मड़ोड़ना, ये करना वो करना, पद्मासन करना, शीर्षासन करना, या मयूरासन या आसन वासन, ये हमारे वश की बात नहीं है। हम करेंगे कि हड्डी टूट गई तो, क्योंकि वैसे ही कमजोर हो जाती हड्डी बुढ़ापे में, तो इसीलिए ये जवानों के लिए। और जवान समझते हैं योग तो पता नहीं, ये तो योगियों के लिए, तो सन्यासियों के लिए, हम तो अभी जवान है, अभी तो दुनिया ही कहां देखी है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, जब बूढ़े होंगे ना तब ये बातें सोचेंगे। तो बूढ़े सोचते हैं योग तो जवानों के लिए, क्योंकि व्यायाम है, इसमें कई अलग अलग आसन है। और जवान सोचते हैं योग तो सन्यासियों के लिए, हम तो अभी तो संसार देखना है। तो योग किसके लिए है, क्या एक अर्जुन के लिए ही था, हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है, हम सबके लिए, सबके लिए। इसलिए पहले से समझना होगा। इस योग को सीखने के लिए विदेशों से लोग भारत में आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या योग सचमुच किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, बहुत आते हैं, इस पर बहुत डिस्कशन चलता है। क्या किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये तो जीवन से जुड़ा हुआ है, केवल एक धर्म की बात नहीं है। तो क्या है योग और क्या है राजयोग, हम आज देखेंगे, और योगी कौन है इसको पहचानेंगे। फिर इसके बाद का सत्र होगा कि योगेश्वर कौन है जिससे योग लगाना है। फिर इसके बाद होगा कि वो कैसे कनेक्शन हो, तो इसको हम कहते हैं ABC ऑफ मेडिटेशन। ए माना आत्मा को पहचानना, बी माना बाबा परमात्मा को पहचानना, और सी माना उनका कनेक्शन करना। तो अभी का जो सत्र है वो है अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। सदियों से ये प्रश्न चला आता है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ये प्रश्न पूछा है, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, बहुत बड़े फिलोसोफर्स होकर के गए हैं, दर्शन शास्त्री, इन्होंने भी ये प्रश्न किया, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। क्या आप नहीं जानते अपने आप को? सभी जानते कि नहीं जानते? जो समझते हैं कि हम नहीं जानते, हाथ उठाएं। अभी सोचने पड़ गए, पता नहीं क्या जवाब दें। जो समझते हम जानते हैं वे हाथ उठाएं, उसमें भी सब हाथ नहीं उठा रहे। जो कहते पता नहीं वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो आज आपको पता बताएंगे। तो जब हम योग कहते हैं तो योग शब्द का, ये शब्द कहां से आया? संस्कृत शब्द युज, ये इसका ओरिजिन है, इसी शब्द से आया है ये शब्द योग। युज का अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं। कोई भी प्रकार का जोड़ हो वो योग है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, है ना, योग और वियोग कहते हैं। तो वियोग का अर्थ तो बड़ा सहज है समझना, वियोग माना अलग होना, दूर जाना, बिछड़ना। तो जैसे दूर जाना, बिछड़ना, अलग होना, ये वियोग है, तो उसकी भेंट में योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है मिलन, योग का अर्थ होता है संबंध, योग का अर्थ होता है मिलाप, योग का अर्थ होता है कोई भी याद। अब हम इसको और देखेंगे, क्योंकि योग के भी कई पहलू हैं। जब हम मिलन कहते हैं, संबंध कहते हैं, जोड़ कहते हैं, तो भी कई प्रकार का होता है। इसको हम तीन स्तर पर देख सकते हैं योग शब्द को। एक स्तर है भौतिक स्तर में मिलन, भौतिक वस्तुओं का मिलन, चीजों का मिलन। हम एक प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, वो भी योग है। दो वस्तुओं को जोड़कर तीसरी वस्तु पैदा करते हैं, वो प्रयोग होता रहता है। दो व्यक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं, वो भी योग है, उसको सहयोग कहते हैं। हम कोई बात सोचते हैं, वो बात हो जाती है, वो संयोग है। तो संयोग, सहयोग, प्रयोग, ये सब योग से जुड़े हुए शब्द हैं। पर उनको तीन स्तर में हम देख सकते हैं। एक है भौतिक चीजों का मिलाप, दूसरा है मन का मिलाप, मन से भी मिलन होता है। हम किसी को याद करते हैं, मेरी याद उस तक पहुंच जाती है, एक सेकंड में टेलीपैथी, तुरंत वो उसको वो भी याद करने लगता है, जैसे कि कोई याद कर रहा है। भारत में तो ये भी एक विचार है कि भाई जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, जो भाई कोई याद कर रहा होगा आपको, क्योंकि उसकी याद जैसे आपको उस आप तक पहुंच रही है। तो ये मन से भी मिलन होता है। और तीसरा स्तर है आध्यात्मिक स्तर, जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि न आत्मा दिखाई देती न परमात्मा दिखाई देते हैं। भौतिक वस्तुओं का मिलन तो दिखाई देता है, हाँ देख सकते हैं, जोड़ हुआ, ये चीज पैदा हुई, उससे प्रकट हुई। मन का भी मिलन हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, जिसको हम याद करते हैं, वो मन पटल पर एक चित्र खींच जाता है और एकदम हम उसी में खो सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर जो आत्मा और परमात्मा का है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, न आत्मा दिखाई देती न परमात्मा, लेकिन ये मिलन है जरूर। इसलिए इनका बहुत ही गायन है और उसको हम आज पहले लेवल में हम माना, हम योग का जो प्राथमिक स्तर है आत्मा, उसको हम जानेंगे। तो भौतिक स्तर को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। हम रेडियो ऑन करते हैं, फिजिकल एनर्जीज बहुत हैं ये सारे वातावरण में, तो रेडियो ऑन किया, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो ध्वनि की शक्ति, साउंड एनर्जी, जिस रेडियो स्टेशन से वो एनर्जी आती है, हमारा रेडियो रिसीवर उसे स्वीकार कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, और चाहे कितनी भी दूर की स्टेशन हो अपने रेडियो पर देख सुन सकते हैं। ये भी योग है, ट्यूनिंग करना पड़ता है उसके लिए, वही मीटर बैंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के आधार से हम वो आवाज को पकड़ सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का योग है, ये प्रकृति की शक्ति है। लेकिन जो मानसिक और भी फिजिकल रूप में हम देखें, हमें यहाँ बिजली चाहिए तो बिजली घर से जो तार आती है, उस तार से अपने घर की तार को जोड़ते हैं और फिर हमें बिजली प्राप्त होती है। ये सब भौतिक रूप है। तीसरा स्तर है दूध में चीनी मिलाई, ये भी योग है, दूध और चीनी का योग हो गया। तो जिस चीज से जोड़ते हैं उस चीज का गुण मिल जाता है। चीनी से जोड़ा, दूध में चीनी डाली, दूध मीठा हो जाएगा क्योंकि चीनी का गुण दूध में आ गया। बिजली घर से जोड़ा, बिजली आ गई। रेडियो स्टेशन से जोड़ा, रेडियो की आवाज स्टेशन की हमें मिल गई। अब ये भौतिक स्तर है। मानसिक स्तर भी हम देखते कैसे अनुभव होता है तुरंत। आप कोई दुखद घटना को याद कीजिए, सुखद घटना को याद कीजिए, चाहे वो बहुत पुरानी क्यों ना हो, आज भी आप अगर उसे याद करते हैं, अगर वो दुखद है तो जैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको एकदम कांपना भी शुरू कर देंगे, कहते प्लीज प्लीज मत याद कराइए, क्योंकि उसी समय वो याद जैसे ताजी हो जाती है, वो दृश्य सामने आ जाता है, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, क्योंकि मन उस दृश्य को देखता है। तो इसी प्रकार वो अनुभव होने लगता है। और सुखद घटना होगी, चाहे इस समय कुछ भी नहीं है, हम अकेले बैठे हैं, तो भी वो घटना याद करते, सुखद घटना याद करते ही एकदम चेहरा मुस्कुराने लगता है। और बाई चांस उस समय कोई मेरे आगे से गुजरा, वो मेरे से पूछे क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराना कोई पाप तो नहीं है, कोई अच्छी चीज है, पर अकेले में क्यों मुस्कुरा रहे हो, कोई है नहीं सामने, तो कोई बात याद आ गई है ना, तो मुस्कुरा देते हैं। तो देखिए कि ये मानसिक स्तर एक सेकंड में मन कैसे पहुंच जाता है, भविष्य में भी पहुंच सकता है, पूर्व पास्ट में भी जा सकता है, भूत में भी जा सकता है, कोसों मील दूरी पर भी पहुंच सकता है, एक सेकंड लगता है मन को कहीं भी जाने में, तो वो भी एक योग है। पर जो तीसरा स्तर है योग का, जो आध्यात्मिक स्तर है, उसमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बात आती है। हम कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, फिर उसके लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई प्रकार के हम तरीके अपनाते हैं ताकि उसमें ईश्वर की याद ठहरे। कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लक्ष्य एक ही है कि ईश्वर की याद ठहरे, उसके अलग अलग रूप है। लेकिन हम सबकी यही शिकायत है, चाहे कितना भी हम ये सब कर भी रहे हैं तो भी सबकी ये शिकायत है, छोटे से बड़े तक, क्या करे, ये मन तो लगता ही नहीं है, मन तो बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह बेलगाम होके दौड़ता रहता है, इसको वश करना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन ने भी यही शिकायत की है, सारी गीता में देखेंगे अर्जुन की शिकायतें ही है या प्रश्न ही है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो भगवान को उसको समझाना पड़ा। फिर जब अर्जुन ने कहा कि ये मन तो लगता नहीं, तो भगवान ने दो शब्द दिए, हे अर्जुन ये मन तब लगेगा जब पहले अंदर में वैराग्य होगा और फिर अभ्यास होगा। वैराग्य और अभ्यास के आधार से मन को हम प्रभु में लगा सकते हैं। पर जब वैराग्य शब्द सुनते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं, भैया क्या हम सन्यासी बन जाएंगे क्या वैराग्य ला करके। लेकिन वैराग्य का अर्थ सन्यासी बनना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है राग रहित। एक है डिटैचमेंट, अलग हो जाना, दूर हो जाना, सन्यासी बन जाना, घर गृहस्थी का त्याग कर देना। दूसरा होता है सब कुछ करते हुए भी उसमें अटैच नहीं रहना, बट अंतर है। जैसे नाव पानी पर होगी तो तर जाएगी, पार हो जाएगी, पर शर्त यह है कि पानी नाव में नहीं आना चाहिए, तब पार हो जाएगी। अगर पानी नाव में आ गया तो पार होगी, डूब जाएगी। तो संसार में रहना बुरा नहीं है, ग्रस्त आदि से है, ग्रस्त के बिना तो संसार चलेगा ही नहीं। लेकिन ग्रस्त आज आश्रम के बजाय जंजाल बन गया है, क्योंकि उसमें वासनाएं आ गई है, विकृतियां आ गई है। इसलिए स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा भगवान ने। अब कई लोग समझते स्थित प्रज्ञ अवस्था कैसे होगी, हम तो हिलते रहते हैं, तो कैसे होगी? वैराग्य से होगी, फंसे नहीं, छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं। फंसते हैं तब दुखी होते हैं, दुख का कारण ये फंसना। जैसे कोई कैद में आ गया, कैद में डाल दिया, फंस गया, अब निकल नहीं सकता उन सलाखों से, वहीं उसको रहना है। नहीं तो स्वतंत्रता तो हम सबका अधिकार है। एक पक्षी को आप कितना भी दाने दो, पर पिंजरे में रख के ही देंगे ना, पिंजरे में रखो, सोने का पिंजरा ही क्यों ना हो, परंतु वो तब तक वो पिंजरे में रहेगा जब तक उस पिंजरे का दरवाजा बंद है। अगर भूल से भी पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया, मान लो, अब पंख तो उसको है, वो क्यों पिंजरे में कैद होगा, वो तो उड़ना चाहेगा। और थोड़ी देर के बाद को याद आएगा, अरे पिंजरा तो बंद ही नहीं किया, दाने तो डाले पर पिंजरा बंद ही नहीं किया। थोड़ी देर के बाद आएंगे तो पक्षी है ही नहीं, क्योंकि उसको दाने से क्या लेना देना, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। पिंजरे में इसलिए नहीं है क्योंकि दाना मिल रहा है, वो तो स्वतंत्र पंछी है। तो हम देखते हैं कि आत्मा को भी स्वतंत्र कहा गया, आत्म पंछी कहते हैं। जब शरीर के साथ जितना हिसाब किताब है तब तक वो है, और जैसे हिसाब किताब पूरा हुआ आत्मा को निकलने में कितनी देर लगेगी। लेकिन आत्मा खुद अपने आप को ही बांध रही है। अब राजयोग हमें सिखाता है कि आप अपने आप को पहचानो और कैसे देह में रहते भी न्यारे रह सको, तब न्यारा रहना सहज हो जाएगा। तो अंत के समय भी आप सहज न्यारा बन सकेंगे, परंतु उसके लिए खुद को पहचानना होगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहां जाना है। गीत तो गाते हैं, कहां तेरी मंजिल, कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। तो कौन है मुसाफिर, कहां है ठिकाना, कहां आए हैं, क्यों आए हैं, ये प्रश्न ही चलते रहते, कहां है जवाब, यह आध्यात्मिकता में मिलता है। इसलिए राजयोग को समझना माना पहले है राजा बनना। राजयोग हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम राजा बनते हैं अपने इंद्रियों के राजा। आज मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है, जहां इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींचते हैं, मन उनका गुलाम हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, वहां लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, लिखा रहता, पढ़ भी रहे हैं फिर भी क्या करते हैं, हाथ लगाने की कोशिश करते, क्यों लगा रहे हो, लेना है क्या, खरीदना है क्या, तो आपको तो खाली देखना है बस। लेकिन फिर भी हाथ लगाने चाहेंगे, कई तो चोरी भी करके ले जाते, इसलिए सब शीशों के बंदर पैक वो रेलिंग लगाते ताकि कोई नजदीक भी न जाए, क्योंकि लगाते नहीं तो लगाने की, नहीं तो वो सब करने की क्या जरूरत है, पर आकर्षण होता है। तो ये इंद्रियों का रस मन को अपनी ओर आकर्षित करता है और मन चंचल हो जाता है क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत है। फिर हम तो राजयोग हमें इनका राजा बनाता है। फिर हम देखें कि केवल इंद्रियों का ही राजा नहीं बनना, मन का भी राजा बनना है। जो हम सोचना चाहे वो ही सोचे, जो नहीं सोचना चाहे वो एक सेकंड में हम रोक सके उस विचार को। गाड़ी में ब्रेक इसीलिए तो होती है, और आजकल तो ब्रेक भी इतनी पावरफुल होती है, पावर ब्रेक, एक सेकंड उसी समय स्पीड कम हो जाए उसी समय भी रोकना चाहो रोक सको। अगर थोड़ी दो यार्ड आगे चली गई फिर रुकी तो क्या बड़ी बात है, उसी समय रुकनी चाहिए। तो मन में भी क्या हमें सोचना है वो हम वही हम सोचें, और नहीं सोचना है वो न सोचें। लेकिन होता क्या है, जो सोचना चाहते हैं वो याद ही नहीं आता, अरे पता नहीं क्या था भूल गया, फिर कहेंगे पता नहीं क्या बात है आजकल का भुलक्कड़ होता जा रहा हूं, कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन जो बातें भूलनी है वो भूलती कहां है, क्या करूं कैसे भूलूं, तो जो बातें भूलनी वो भूल नहीं सकते, जो बातें याद करनी वो याद नहीं कर सकते, ये भी असमंजस में ही रहते हैं। ये भी कैसी बड़ी विडंबना कि याद करना चाहे याद ना आए और भूलना चाहे भूल ना सके, तो राजा कहां हो गए, मन के गुलाम ही हो गए, मन के भी गुलाम हो गए, इंद्रियों के तो गुलाम है ही है मन के भी गुलाम है। तो राजयोग हमें उनका राजा बनाता है, जो सोचना चाहो वही सोचो। वैसे कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, बहुत सुंदर है ये बात, कोई भी कार्य करना पहले सोचो फिर समझो फिर करो। यहां तक भी कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूं, कहां यहां तक कभी पहुंचे कि क्या सोचने जा रहा हूं वो भी सोचो, ये ठीक सोच होगा, ये सोच जो सही होगी ये जो मैं सोचने जा रहा हूं। तो सोच समझ कर कर्म करो, उसकी वजह हम क्या करते हैं उल्टा चलते हैं, कर्म कर लिए एक्सटेम्पो, हाँ तुरंत थप्पड़ मार दी बिना सोचे समझे, गोली चला दी मार डाला, अरे फिर समझ आई ये क्या किया मैंने, ये तो मर गया, हाँ गोली तो चला दी फिर तो मर गया, समझ आई मर गया, फिर सोच चलता अभी क्या करूं, तो क्या किया उल्टा, पहले कर लिया फिर समझा फिर सोच, और होना क्या चाहिए, पहले सोच फिर समझ फिर कर्म, सौ बाहर सोच करके फिर कर्म करो, क्या परिणाम निकल सकता है इसका, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही है किसी भी रूप से। इसीलिए मन के भी राजा बनो, फिर जब मन के राजा हम बनते हैं तब सबके दिलों के भी राजा बन सकते हैं। दिल को जीतो बाहुबल से, हथियारों के बल से, युद्ध के बल से, कोई नहीं आज संसार को जीत सका है, सिकंदर जैसा भी कोई नहीं जीत सका है, लेकिन दिल जीतो सबका, और वो दिल कैसे जीतेंगे, जीवन में मूल्य आने पर ही जीत सकेंगे। और जब दिल जीतेंगे सबका तो सारी दुनिया को भी जीत सकते हैं, सारी दुनिया को आप जीत सकते हैं सबका दिल जीतकर, जिसको कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाए नर नारायण बन जाए। तो ये नर नारायण कैसे बनेगा, नारी लक्ष्मी कैसे बनेगी, मानव देव कैसे बनेगा, इसी राजयोग से। तो मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। कौन थे राजाओं के राजा, ये भारत की संस्कृति है, जो देवी देवताएं जिनको हम पूजते हैं, ये भारत की संस्कृति है, ये हिंदू धर्म की बात नहीं है। भाई हम तो हिंदू धर्म के नहीं है, हम इनको नहीं मानते, मानने की बात नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। यही भारत देवताओं की दुनिया, देवताओं का देश था, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, ये भारत की संस्कृति है, ये देवभूमि था भारत। लेकिन आज ये दानव स्थिति कैसे आ गई, उसका कारण ये है, खुद को भूल गए, उस ईश्वर को भूल गए। तो राजयोग के द्वारा हम राजा बनते हैं, इंद्रियों के, अपने मन के, सबके दिलों के, तो सारे विश्व के भी वापस फिर से बन सकते हैं। भारत फिर से सिरमौर बन सकता है और बनेगा जरूर, पर उसके लिए हमें वो शक्ति कहां से मिलेगी, उस परमात्मा से मिलेगी। इसलिए राजयोग माना उस सर्वोच्च सत्ता से योग, उस परम सत्ता से मन की तार जोड़ना, जिससे वो शक्ति हम ले सके। तो राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान, सर्वोपरि, सर्वोत्तम परमात्मा से मन की तार जोड़ना। फिर राजयोग अर्थात उसकी जो विधि है वो भी बड़ी रॉयल है, बड़ी सहज है, कोई कष्टदायक नहीं है। परमात्मा हमारे परम पिता हैं, अगर पिता से मिलना है तो क्या कष्ट सहन करके पिता से मिलना होता है क्या? पिता तो खुद ही दौड़ा दौड़ा आएगा बच्चे से मिलने के लिए, बच्चा क्यों कष्ट करे पिता से मिलने के लिए? इसलिए इतनी सरल विधि है जो हर एक कर सकता है इस राजयोग का अभ्यास। फिर जो प्राप्ति है वो भी सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची प्राप्ति हम किसको कहेंगे? कोई सोचे धन की प्राप्ति, ईमान की, यश की, ये प्राप्ति है, समझो किसके पास सब कुछ है ये, फिर भी आप उनसे पूछिए आप संतुष्ट हो? कहते बहन जी कहां संतुष्ट होंगे, तो भाई क्या चाहिए संतुष्ट नहीं हो, सब कुछ है, कमी क्या है? कहते बस शांति चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे? शांति। इसलिए भगवान से हम यही मांगते इतनी, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, दया करो, कृपा करो, रहम करो, खुशी दो, प्यार दो, भगवान से हम ये गुण मांगते हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि ये गुण भी मांगे नहीं जाते हैं, ये तो पाए जाते हैं। सूर्य में प्रकाश का गुण है, लेकिन सूर्य को कहना पड़ता है क्या कि हे सूर्य मुझे प्रकाश दो? वो तो दे ही रहा है, आप अपने दरवाजे खिड़कियां खोलो तो क्यों नहीं आएगा सूर्य का प्रकाश? आप एक खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाकर आप फूलों को कहो हे फूल हमें खुशबू दो, अरे खुशबू तो दे ही रहा है वो, इसीलिए तो वो बगीचा है। पर आपका नाक बंद है तो वो फूल भी क्या करेगा? किसी का नाक बंद होता है ना तो उसको तो खुशबू ही नहीं आती है, तो नाक खोलो ना तो तब सांस लो, खुशबू मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? वो खुशबूदार फूल नहीं कहता है मेरी खुशबू लो, वो अपने आप आती है। यहाँ पर रात को रात की रानी का फूल, इतनी इसकी वो खुशबू आती है, आई होगी ना आप लोगों को भी कल, अपने आप आपने सोचा ये कहाँ भी ये रात की रानी है या नहीं है? खुशबू अपने आप आई, वो फूल अपने आप आकर्षित करता है, खुशबू अब देता ही रहता है, चाहे कोई सोचे या ना सोचे। तो भगवान से भी हम मांगते शांति दो, शक्ति दो, प्रभु ये दो दो। अच्छा मिल भी गई तो पता कैसे चलेगा, कोई चीज थोड़ी है जो मिली है, खुशबू तो फिर भी नाक को मिलेगी, पर शांति मिली ये पता कैसे चलेगा? कोई चीज है जो हाथ में आए कहेंगे हाँ अभी शांति मिली, ये तो मन की स्थिति है। खुशी भी मन की स्थिति है, शक्ति भी मन की स्थिति है, ये सारी मन की स्थिति है। वो मन की स्थिति कैसे आएगी, कोई मांगने से आएगी क्या? अब उसको समझना होगा। तो राजयोग से कैसे इन गुणों की हम परमात्मा से अधिकार से प्राप्ति करते हैं, कोई मांग कर नहीं, मांगते मांगते तो भिखारी रह गए। इसीलिए कहा कि ईश्वर जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये किसकी बात है? बिन मांगे मोती दे सकता है भगवान, और मांगे तो भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि ये गुण हमारा अधिकार है। छप्पर फाड़ के हम ले सकते हैं बिना मांगे, पर उसके लिए योग्य पात्र चाहिए। बस इतना ही हमको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, हम योग्य पात्र कहाँ हैं। तो योग्य पात्र बनना है, और योग्य पात्र कैसे बन सकेंगे? अपने आप को पहचान कर। तो इस राजयोग के द्वारा ये सब अनुभूतियां हम कर सकते हैं। इनके लिए हमें कुछ और परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। परखने की शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति आएगी, व्यवहार में शुद्धि आएगी, ये सारी बातें आएगी हमारे जीवन में, और यही हम चाहते हैं, यही हमें मिले, तब जीवन जीने की कला आएगी। तो उसके लिए वास्तव में हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, और यही हमें जीवन जीने की कला सिखाएगा। तो राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो राजयोग आत्मा और परमात्मा की अनुभूति का वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिस पर सभी चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले खुद को पहचानना होगा। आज हम खुद को नहीं जानते, इसीलिए ये शिकायत है कि मन ईश्वर में नहीं लगता, मन चंचल है, क्योंकि खुद को ही नहीं जानते। मन क्या है वो ही नहीं जानते, क्या मन प्राकृतिक है या आध्यात्मिक है वो भी नहीं समझते हैं। फिर मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो मन तो रुकता नहीं है। पहचानो तो सही पहले मन को, मन कोई रोकने की चीज थोड़ी है, मन तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए मैं कौन हूँ ये पहचान नहीं है, इसलिए परमात्मा में मन नहीं लगता है। तो जैसे बिंदु बहन ने कहा, पहले स्वयं को पहचानो। इसलिए इंग्लिश में भी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक सेल्फ को नहीं रियलाइज किया है तब तक गॉड भी रियलाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद सेल्फ को नहीं जानते और फिर ईश्वर को भी कहाँ जानते। आज किसी से पूछो परमात्मा कौन है, कितने मंतव्य, जितने मुख उतनी बातें। वो आपका अगला विषय होगा, क्योंकि परमात्मा ने अपनी पहचान खुद ही हमें दी है, तब अब तक तो जानते भी नहीं थे। फिर चलो वो भी जान लिया तो फिर तीसरा विघ्न भी आ सकता है, जो जिसके कारण मन नहीं लगता ईश्वर में। जैसे आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, मोबाइल आपका चल रहा है, उसका भी हेलो आया, अब बात करते करते कट गया क्योंकि वहां टावर नहीं है, हाँ, कुछ ऐसा है, कुछ कारण हो गया तो कट गया। तो बात कर रहे थे, कट क्यों गया? कनेक्शन कट गया। तो तीसरा कारण क्या है कि मन आज इतना मैला हो गया है, इतना मैला हो गया है कि उसमें प्रभु की याद ठहरेगी कैसे। हम दूध को एक बर्तन में रखना चाहते हैं और दूध रखने वाला बर्तन मैला है। आप रखेंगे उसमें? रख सकेंगे? चलो रख भी दिया, वो दूध पीने योग्य होगा? मैला था दूध, तो मैला हो गया। कितना साफ बर्तन को करते हैं, उसके बाद जाके दूध रखते हैं। अगर खटाई वाला है तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, उसका दूध का बर्तन ही अलग होता है। खटाई वैसे नहीं, जिसने सब्जी वब्जी बनाई उसी में दूध डालेंगे। तो पात्र भी तो इतना योग्य चाहिए। तो आज मन इतना मैला हो चुका है जिसमें इतनी मनोवृत्ति हमारी बुरी हो चुकी है, उसमें ईश्वर स्थान ही कैसे लेगा। इसीलिए मन का शुद्धिकरण भी आवश्यक है, तब परमात्मा, तब प्रभु की स्मृति उसमें ठहर सकेगी। अब ये तीनों बातें राजयोग में हम बताते हैं। तो राजयोग वास्तव में क्या है? कई लोग कहते हैं हम तो कर्म योगी है। कर्म योगी का भी अर्थ कोई राजयोग से अलग नहीं है। कर्म योगी कोई राजयोगी नहीं है ऐसी बात नहीं है, राजयोगी कोई कर्म योगी नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राजयोग के अंतर्गत सब योग आते हैं। सबसे पहले ज्ञान योग, बिना ज्ञान के योग लग ही नहीं सकता है परमात्मा से। जब तक खुद को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, कर्म को नहीं जाना, समय को नहीं पहचाना, तब तक मन ईश्वर में लगेगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान योग अर्थात अपने आप को पहचानो, ईश्वर को पहचानो, ये सब पहचानो, तब मन लगे ईश्वर में। और तो ये राजयोग से अलग थोड़ी है ज्ञान योग। केवल शास्त्रों का पठन पाठन ही ज्ञान योग नहीं है, इसको जीवन में कहां तक लाया है। फिर उसके बाद बुद्धि योग। परमात्मा ने यही कहा, अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ, ये बुद्धि योग है। तो मन और बुद्धि यही ईश्वर में लगाना है। बुद्धि मन को दिशा दे, सोचने का काम मन का, समझने का काम बुद्धि का। तो बुद्धि मन को दिशा दे, न कि मन बुद्धि को लगाए। पर आज बुद्धि हीनता की स्थिति आ गई है, क्योंकि मन चंचल हो गया। बुद्धि अर्थात अंतरात्मा की आवाज, उसको सुनते ही नहीं है, उसको दबा के रखा हुआ है और इंद्रियों के वश होके कर्म कर रहे हैं। वही आवाज, उसमें तो बहुत आवाज है, अंतर की आवाज सुनने का समय कहाँ है। इसलिए ये बुद्धि योग है। बुद्धि, सद्बुद्धि हम ईश्वर से मांगते हैं, तो सद्बुद्धि कैसे आएगी? ज्ञान से आएगी। फिर ये कर्म योग है। कर्म योग का मतलब ये नहीं कि केवल कर्म करना। कर्म योग का बहुत गहरा अर्थ है, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूरा अधिकार रखो, कर्म आपके हाथ में है, आप ही करते हो, आप ही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। परंतु अच्छा कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत रखो, ये कर्म योग है। फल ईश्वर पर छोड़ दो। आप मत सोचो मैंने इतना अच्छा किया, मुझे क्यों नहीं इसका रिटर्न मिला। मिलेगा, अपने समय पर मिलेगा, तुरंत मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए कर्म योग सिद्धांत एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल ईश्वर देगा, अपने समय पर देगा। आप क्यों चिंता करते हो, आप करते जाओ। इसीलिए कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। पहले जमाने में नेकी तो बहुत होती थी, इसलिए दरिया चाहिए था उसके लिए। धीरे धीरे कहावतें बदल गई, नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि कुआं ही पर्याप्त था, दरिया जितनी नेकी नहीं होती थी। तो कुएं में डाल, फिर तो कुआं भी बहुत बड़ा है। फिर बदल गया ये भी वाक्य कहावत, और कह दिया नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डा ही बहुत है। धीरे धीरे खड्डा भी बहुत बड़ी चीज हो गई, जो खड्डे में भी चलो डालो। आजकल तो कहते नेकी कर पॉकेट में डाल। समझ गए ना, आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। नेकी इतनी और स्वार्थ तो पूरा पूरा, 1% या चलो 10% भी सेवा में लगाया, 90% अपनी जेब में, भ्रष्टाचार। तो ये सब क्या है? इसी को हम कर्मयोग कहेंगे क्या? नहीं। इसीलिए कर्म योग अर्थात कर्म हाथों से करो, मन बुद्धि ईश्वर के साथ हो। क्योंकि मैं तो केवल निमित्त हूं, शक्ति उनकी है। इसीलिए ग्रंथ में बहुत सुंदर लिखा है, करण करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ। इसके पीछे बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी भावना है। अगर हम इसको लिटरली लेंगे तो इसका अनर्थ होगा कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही करता है। भाई चोरी भी वही करता, खून भी वही करता, डाका भी वही डालता, फिर भोगे भी तो वही ना, हम क्यों भोगे, वही कर रहा है। लेकिन नहीं, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन ये क्यों कहा करण करावन आपे आप, मानुष के नहीं हाथ? क्योंकि परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कर्म करने के बाद। आप चिंता मत करो, आप केवल निस्वार्थ होकर के सेवा करो, फल की चिंता किए बिना। ये समझो कि शक्ति उनकी है, फिर उसका अभिमान भी मत रखो कि मैंने किया। अगर सफलता मिली तो ईश्वर ने दिलाई, अगर असफलता मिली तो सोचो कि अवश्य इसमें कोई देर है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो ये है सच्चा कर्म योग। और फिर भक्ति योग। भक्ति का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, ईश्वर से सच्ची लगन। और जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ नहीं होता है। अगर स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो न्योछावर होना होता है, प्रेम में तो त्याग होता है, प्रेम में तो बलिदान होता है, न कि स्वार्थ होता है। आज तो स्वार्थ है आपका, शाम का हम विषय लेंगे ये। और फिर संन्यास योग, किसका संन्यास? बुराइयों का, विकारों का, विकृतियों का। और फिर समत्व योग, बैलेंस का योग। पद्मासन पर बैठे लेकिन पद्म जैसा जीवन कहाँ? कमल फूल समान जीवन जीना है, केवल पद्मासन लगाकर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहाँ बुजुर्ग लोग बैठ सकेंगे, आजकल तो घुटनों की प्रॉब्लम है, कहाँ पद्मासन लगाएंगे। पर पद्म जैसा जीवन हो, कोई शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है, परंतु बैलेंस ऑफ माइंड चाहिए। बैलेंस ऑन हेड नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, बैलेंस ऑफ माइंड हर परिस्थिति में। उसको कहते हैं समत्वता, बैलेंस, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में समान। और उसके आधार से हम सच्चे राजयोगी बन सकते हैं। तो राजयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है, किसी भी पृष्ठभूमि का, किसी भी धर्म, जाति, रंग, कोई भी हो, किसी भी आयु का। सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है। आपकी आत्मा आपको बहुत सुंदर दिशा देती है, पर आप उस आत्मा की आवाज को दबा देते हो। जैसे सफेद वस्त्र है, कितना हमें ध्यान रखना पड़ता है कि दाग न लगे, क्योंकि दाग लग गया फिर उस दाग को छिपा देते हैं ना। कई बार तो भाई दाग लग जाता है सफेद पर, तो अभी लोग कहेंगे ये दाग लगा, तो छिपाने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में योग को समझना माना पहले योगी को समझना, मैं कौन हूं। आज हम किसी से पूछते आप कौन हैं, तो अपनी शारीरिक उपलब्धियां, जो संसार की प्राप्तियां, उसी के आधार से अपना परिचय देता है। कोई कहेगा मैं, अब चाहे धर्म का वर्णन करे, जाति का, प्रांत का, देश का, भाषा का, ऑक्यूपेशन का, लेकिन क्या सचमुच ये आप हैं? समझो आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, ये तो आपने जब डॉक्टरी पास की, MBBS किया, इतने सालों तक 25-26 साल की मानो उम्र के बाद जाकर के आप डॉक्टर की डिग्री ली, चलो तब तक तो आप डॉक्टर तो नहीं थे ना, तो क्या थे? कुछ और थे ना, कहेंगे स्टूडेंट हूं। तो ये तो आपका मानो मैं क्या हूं परिचय बदलता रहता है। जो चीज बदलता रहता है वो आप थोड़ी है, आप तो शाश्वत है। जो चीज परिवर्तित होती रहती वो तो असत्य है। सत्य तो शाश्वत है, सत्य तो नित्य है। परिवर्तनशील चीज तो सत्य कहां हुई? आज एक व्यक्ति झूठ बोलता है, मान लो एक सत्य को छिपाने के लिए, तो उस झूठ को साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? नहीं पढ़ते है, पहला ही झूठ। अगर वो व्यक्ति पहले सच बताता है तो सच को साबित करने की जरूरत ही नहीं, प्रत्यक्षता को, प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। पर झूठ बोल दिया तो झूठ को साबित करना है, तो 100 झूठ और बोलेगा, क्योंकि झूठ में झूठ, झूठ में झूठ। इसलिए नार्को टेस्ट और ये टेस्ट और वो टेस्ट, पता नहीं क्या क्या DNA टेस्ट, आजकल दुनिया में ये सारे टेस्ट होने लगे हैं, क्योंकि बदलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कौन हूं, वो सत्य हूं, जो शरीर से पहले भी था, जो शरीर के बाद भी रहूंगा। इसीलिए कहा है एक बहुत सुंदर, जैसे हम सुनते हैं प्रकृति के लिए क्या है, जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। क्यों मिथ्या कहा? क्योंकि ये प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन है, तो परिवर्तनशील चीज तो मिथ्यम हो गई ना, आज कल ये नहीं रहेगी। हम कहीं जाते हैं, बहुत सुंदर इमारत देखते हैं, 20 साल के बाद गए तो वहां तो इमारत ही नहीं है, क्या हुआ? वो तो टूट गई। तो क्या है कि जो चीज परिवर्तनशील है वो तो सत्य कहां हुई? शरीर तो परिवर्तनशील है, हर 10 साल में आपकी सारी कोशिकाएं बदल जाती है, पता चलता आयु दिखाई देती है शरीर से, चाहे कितना भी कोई प्लास्टिक सर्जरी करा दे, बाल काला कर दे, क्या नहीं पता चलता आयु कितनी है? भले काला कर दे बाल तो क्या हुआ, तो इसीलिए मैं कौन हूं ये पहेली आज तक चली आ रही है। और फिर दुनिया के आगे हम कुछ और अपना परिचय देते हैं, पर भगवान के आगे तो कुछ और ही देते हैं। भगवान के आगे तो कभी नहीं मैंने कहा मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं होशियार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं तो फलाना हूं। भगवान के आगे अपना परिचय क्या दिया, मैं तो मूर्ख हूं, पापी हूं, कामी हूं, कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख निर्बल। आरती में यही तो कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी पापी। तो भगवान के आगे मूर्ख खल कामी पापी और दुनिया के आगे कोई और परिचय, तो ये कौन सा परिचय सही है? परिचय तो एक ही होना चाहिए ना। और फिर कोई कह दे मैं नहीं जानता। एक व्यक्ति से पूछा मैंने, पूरा डिप्रेस था, बहुत डिप्रेशन में था, तो मुझे उनके मतलब यंगस्टर था, जवान था, तो उनके माता पिता ने कहा बहन जी थोड़ा इनको आप कुछ समझाओ। मैं क्या समझाऊं, डिप्रेशन में था, तो मैंने ऐसे ऐसे पूछ लिया, भैया आप जानते हो आप कौन हो, आप जानते हो आप कौन हो? तो कहा नहीं, नहीं, सीधा कह दे नहीं। फिर मैंने पूछा अच्छा आप जानना चाहते हो आप कौन हो? नहीं, जानना भी नहीं चाहता। चलो कोई कह दे हाँ बताइए, नहीं जानता हूं बताइए, जैसे आपने कहा नहीं जानता, मना आप चाहते हो कि बताएं। अब वो जानना भी नहीं चाहता था, अब बताओ क्या उसका भविष्य होगा, क्या हो गया, कैसे वो समझेगा। चलो साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए, वो तो उनको ट्रैंकुलाइजर दे देगा, नींद की गोलियां खाता रहो सोता रहो, क्या वो उसका जीवन तो गया काम से। तो जानना भी नहीं चाहते, परंतु वो भी एक व्यक्ति था, स्वामी विवेकानंद जैसा, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा। जब वो अपने गुरु के सामने गए और गुरु ने पूछा आप कौन हो, तो क्या जवाब दिया, यही तो मैं जानने आया हूं। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महसूस हुआ यही सच्चा जिज्ञासु है, ये जानने आया है। तो आप सब कौन हो, वही सच्चे जिज्ञासु हो कि नहीं हो, हो कि नहीं हो? हाँ जरूर हो। तो कौन हूं मैं, कौन है साधक, आत्मा हूं, शरीर हूं, क्या हूं? साधक कौन है? परमात्मा साध्य है, उस तक पहुंचने की साधना है ये राजयोग। पर उसके लिए साधक अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूं। चलो आपने कह दिया मैं मनुष्य हूं, पर मनुष्य भी किसको कहते हैं? क्या केवल हड्डी मांस का पिंजरा ही मनुष्य कहलाता है? नहीं, एक जीता जागता जिंदा व्यक्ति बहुत सीरियस है मान लो, पर अभी जीवित है, लास्ट स्टेज है उसकी, और उसी स्टेज में उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एकदम सीरियस हार्ट अटैक हो चुका है, सीवियर हो चुका है, पर अभी भी सांस चल रहे हैं, और उसको ले गए हॉस्पिटल, और जैसे पहुंचा थोड़ा सा किया खत्म, आ गया मैसिव अटैक, खत्म। डॉक्टर कहेगा सॉरी ले जाओ बॉडी को। तो आया तो व्यक्ति के रूप में, नाम लिखवाया, पर गया शरीर तो वही गया ना, जैसे आया था वैसे ही गया, पर अंतर क्या हुआ? उसकी चेतनता चली गई। तो कौन सी है चेतनता, किसको हम चेतनता कहेंगे? मनुष्य जिसको इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो ह्यूमन पार्ट तो ये, पर बीइंग पार्ट वो चेतना, वो मैं कौन हूं, उसको समझना माना खुद को समझना। इसलिए मैं एक आत्मा हूं, इसको इंग्लिश में बहुत सुंदर नाम देते हैं, सोल इज इक्वल टू सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी, यूनिक लाइट एनर्जी है इसमें, ये लाइट की बात नहीं है, यूनिक है वो, सबसे अलग है। अब आत्मा क्या चीज है और कैसे शरीर से अलग है? महसूस हो सकता है आत्मा अलग है शरीर से, गाड़ी में ड्राइवर ही न हो तो गाड़ी किस काम की? मर्सिडीज कार है आपने, बहुत 20-25 लाख की या 50 लाख की, चाहे कैसे भी बहुत ही बढ़िया गाड़ी ले, पर ड्राइविंग आती नहीं, ड्राइवर भी तो चाहिए ना। तो शरीर एक गाड़ी की तरह है, मैं ड्राइवर हूं, शरीर एक डिब्बी की तरह है, डिब्बी बहुत ही सुंदर हो, सोने की हो, पर ये डिब्बी के अंदर क्या रखा है उसका महत्व ज्यादा है ना। डिब्बी चाहे बोले लकड़ी की भी हो पर अंदर हीरा है तो उस डिब्बी को भी आप संभाल के रखेंगे, पर हीरा ही नहीं है, अगर हीरा ही चला गया, भले डिब्बी का भी महत्व है, हीरे का भी महत्व है, पर अधिक महत्व किसको देंगे, डिब्बी को या हीरे को, भले वो सोने की हो, हीरा चाहिए ना उसके अंदर, हीरा तो सोने से ज्यादा कीमती है। फिर झोपड़ी और दीपक, अंधेरा हो झोपड़ी में, दीपक ही नहीं है तो झोपड़ी चाहे कैसी भी बनाई हो उसका महत्व किसका है, तो महत्व हम किसको दे, मंदिर और मूर्ति, रथ और रथी, वस्त्र और अभिनेता, तो मैं कौन हूं ये समझने के लिए, ये आत्मा क्या है, किस रूप में हम अपने आप को पहचाने, वो यहाँ दिखाया गया है। और शरीर आत्मा के बीच में भी अंतर कितना है, कोई भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज कितना अंतर है, शरीर विनाशी है, पंच तत्वों से बनी हुई चीज है, अंत में इन पंच तत्वों को वापस करनी है, लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे, भगवान के घर से आया है, भगवान के घर गया, शरीर के लिए थोड़ी कहेंगे भगवान के घर से आया भगवान के घर गया, मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा के लिए कहेंगे भगवान के घर से आया, क्योंकि वह ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन यह शरीर है। आत्मा अनादि स्वरूप है, उसको किसी ने रचा नहीं है, न जल सकती न कट सकती न सूख सकती न गीली हो सकती है, प्रकृति के स्पर्श से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कर्म अनुसार आत्मा में परिवर्तन आता है, क्योंकि आत्मा ही कर्म करती है, सतो रजो तमो स्थिति आत्मा की ही आती है, उसको हम आगे देखेंगे। तो आत्मा वो अचेत, वो सचेतन शक्ति है, आत्मा अचेतन है और शरीर अचेतन है, निकल गई आत्मा तो अचेतन हो गया, भले प्रकृति की अपनी चेतनता है हम मानते हैं, लेकिन वो प्रकृति की चेतनता भी परिवर्तनशील है, आत्मा की चेतनता परिवर्तनशील नहीं है, आत्मा सदा ही है, थी और रहेगी, आद सच जुगाद सच है भी सच नानिक होसी भी सच, सदा ही सच है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, यानी आत्मा जो प्रकाश स्वरूप है वो प्रकाश उसका सदा ही है, वो किसी और से प्रकाश नहीं लेती, चाहे आज ग्रह जितने भी है भाई सूर्य से प्रकाश लेते हैं, चंद्रमा धरती सारे ग्रह सूर्य से प्रकाश लेते, उनको अपना प्रकाश नहीं है, पर सूर्य में भी फिर प्रकाश कहाँ से है, तो बोला तो कहते कि वहां पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूज होती रहती है, बर्स्ट होती रहती है, मतलब ये विज्ञान है, मतलब इसका सोर्स कहाँ है, फिर भी वो प्रकृति के पांच तत्व ही आ जाएंगे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये प्रकृति पंच महाभूत अनादि अविनाशी है, पर इनके ऊपर आत्मा भी अनादि अविनाशी है और उनके ऊपर परमात्मा वो भी अनादि अविनाशी है, इसलिए पुरुष प्रकृति और परम पुरुष ये तीन शब्दों का बड़ा सुंदर गायन है। तो पुरुष और प्रकृति का खेल है ये, लेकिन इस खेल में पहले पुरुष प्रधान है तो ये संसार सतयुग है, पर समय अंतराल में प्रकृति प्रधान हो जाती है तो ये संसार कलयुग है, बस ये खेल है, अब इस खेल को समझेंगे आप। तो शरीर को समझना माना प्रकृति को समझना, और आत्मा को समझना माना खुद को समझना। अब चलो आपने मान लिया हूं मैं आत्मा, पर फिर कई लोग कहते हैं हाँ मेरे अंदर एक आत्मा है, इसका मतलब यह मैं शरीर हूं मेरे अंदर एक आत्मा है, अब मैं मेरा इसको भी समझना है, शरीर मैं हूं या आत्मा मैं हूं, शरीर मेरा है या आत्मा मेरी है, आत्मा मेरी है तो मैं शरीर हूं, अभी मेरा ये रुमाल है, रुमाल तो मैं नहीं हूं ना, रुमाल से तो मैं अलग हूं ना, तो मैं कौन हूं, शरीर हूं या आत्मा हूं, क्योंकि जब आप कहते हो मेरे अंदर एक आत्मा है माना आप शरीर और आप में आत्मा है, फिर कोई फिर इसका वाक्य बदल देंगे, कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। माना शरीर भी आपसे अलग है, आत्मा भी आपसे अलग है, आपको तीसरी चीज है क्या, आप कौन है। फिर तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। और सही वाक्य किसको कहेंगे, ये व्याकरण का ज्ञान है। हा? कौन सा वाक्य सही है, हा? तीसरा, हाँ ये तीसरा जो जो वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा, क्योंकि बोलने वाली सुनने वाली देखने वाली वो शक्ति जो कह रही है कि मैं देख रहा हूं, कौन देख रहा है, आंखें तो खिड़की के समान है, कान ये क्या है, ये तो एक माइक जैसे होता है ना, आप टेलीफोन करते हैं तो रिसीवर है, ये रिसीव करता है, वो रिसीवर थोड़ी जो वो थोड़ी सुन रहा है, सुन तो आप रहे हैं इस रिसीवर से, आप बोल रहे हैं, ये मुख तो माइक की तरह है, माइक थोड़ी बोल रहा है अपने आप बिना बोलने वाले के, ये तो यंत्र है, ये केवल आवाज को बढ़ा के आप तक पहुंचा रहे, परंतु बोलने वाला तो इनसे अलग है ना। अब जब ये मैंने समझा तो आत्मा जो चेतन शक्ति है वो क्या है, क्या है आत्मा, आत्मा का साक्षात्कार होता है, पर ये आंखें नहीं देख सकती। कई कहते अगर आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है, कैसे देख सकेंगे, ये आंखें तो चरम चक्षु है, ये तो प्रकृति की चीज है, ये आंखें प्रकृति की है ना, प्रकृति की आंखें क्या आंखें हैं, तो ये प्रकृति की आंखें प्रकृति की चीज कोई देखेगी ना, आत्मा तो प्रकृति की नहीं है। और इन आंखों में भी कितनी क्षमता है कि प्रकृति की हर चीज देखे, नहीं देख सकती है, दूर की चीज नहीं देख सकती है बिना किसी टेलीस्कोप के, नजदीक की चीज भी बहुत छोटी है तो भी माइक्रोस्कोप, मतलब आंखें नेकेड आई से नहीं देख सकते, साधन चाहिए। तो आत्मा को ऐसे कैसे देख सकते हैं, स्थूल चीजों को देखने के लिए भी कई के लिए साधन चाहिए, भले प्रकृति का ही साधन है, आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। इसलिए अर्जुन ने नहीं पहचाना भगवान को, दिव्य दृष्टि उसको चाहिए थी, तो आत्मा को देखने की भी दिव्य दृष्टि चाहिए, ये आंखें नहीं देख सकती। तो दिव्य दृष्टि अर्थात मन भी एक दिव्य दृष्टि है, मन से आप बहुत कुछ देख सकते हो, मन भी एक आंख की तरह है जो दृश्य देखता है, इसीलिए मन ये आत्मा की शक्ति है, बुद्धि ये आत्मा की शक्ति है। तो मन क्या चीज है, हमारी सोचने की शक्ति, थॉट एनर्जी, उसी को मन कहते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। मन कई सोचते हैं मन कहीं मस्तिष्क में कहीं है, किसी न्यूरोसर्जन से आप पूछ के आइए मन का स्थान कहाँ है, वो नहीं बता पाएगा, चाहे सारा ब्रेन को उसने ढूंढ लिया हो, क्योंकि मन प्राकृतिक नहीं है, मन आत्मा की शक्ति है, बुद्धि आत्मा की शक्ति है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, एक है इंटेलेक्ट और एक है इंटेलिजेंस, वो अलग चीज है। इंटेलेक्ट ये स्पिरिचुअल चीज है, इंटेलिजेंस वो आपका ग्रे मैटर है, मेमोरी, जैसे आपके कंप्यूटर में आपकी कितनी मेमोरी है वो आपके मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क में है, परंतु सॉफ्टवेयर तो आपको अलग से डालना पड़ेगा ना, वो थोड़ी आपके सीपीयू में है, वो सॉफ्टवेयर अलग चीज है, वो ट्रैवल करता है, आप पेन ड्राइव में लेके जा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, किसी भी कंप्यूटर में खोल सकते हैं। तो ब्रेन मस्तिष्क ये हार्डवेयर है, बहुत इसमें ग्रे मैटर है, कहेंगे इंटेलिजेंस है, परंतु इंटेलेक्ट समझने की शक्ति, अच्छा बुरे को पहचानने की शक्ति, वो किसमें है। पहले जमाने में सोचते थे किसी का आईक्यू इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है वो बहुत सफल व्यक्ति है, आजकल इसको स्वीकार नहीं करते, बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन जीवन में असफल है, ऐसा भी है। इसलिए आईक्यू से ज्यादा किसकी मांग है, ईक्यू इमोशनल कोशेंट हमारा स्ट्रांग चाहिए। इमोशनल क्वोशेंट कैसे स्ट्रांग बनेगा, एमक्यू से मॉरल क्वोशेंट स्ट्रांग चाहिए, और एमक्यू कैसे स्ट्रांग बनेगा, एसक्यू चाहिए, स्पिरिचुअल क्वोशेंट चाहिए। अभी ये सारे शब्द है, तो मन बुद्धि ये आत्मा की चेतनता है और उसके साथ से संस्कार। जब कहते हैं मन बुद्धि सोच समझ कर कर्म करो, तो मन का काम सोचना, बुद्धि का काम समझना, फिर आत्मा शरीर के द्वारा जो कर्म करती है उसी को संस्कार कहते हैं। वही संस्कार है जिसको हम कहते भी मनुष्य अपने साथ क्या ले गया, कर्म। तो कर्म कैसे ले गई आत्मा, वो संस्कार के रूप में कर्म गए। तो मन क्या है, आत्मा की विचार शक्ति, हमारे संकल्प वाइब्रेशंस है जो बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। आपका एक अलग विषय है इस पर, पॉजिटिव थिंकिंग, वो अलग विषय पर आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये हर कंपनी में, गवर्नमेंट का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज योर माइंड, आपके विचार, वो सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास। इसीलिए इसी शक्ति को अगर आपने दिशा दिया तो आप अपने जीवन को भी दिशा दे सकेंगे। तो कैसे इसको दिशा दें, वो राजयोग सिखाता है। और बुद्धि क्या है, परखने की शक्ति है, एक फिल्टर की तरह है। आप चाय छानते हैं, चाय पत्ती आपको पीनी नहीं है, वो नहीं खानी है, इसलिए वो फिल्टर आपने रखा, छनली तो वो ऊपर रह गया चाय पत्ती, चाय पियेंगे आप। तो बुद्धि फिल्टर करती है क्या उचित है क्या अनुचित है, अनुचित के लिए अंतरात्मा की आवाज है, वो आपको रोकेगी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आप बुद्धि को दबा देते हो क्योंकि मन इंद्रियों के वश है, नहीं खाना ही है, खाना चाहिए चाहिए चाहिए, तो बुद्धि को दबा दिया ना। आत्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, मन कहता है चाहिए चाहिए चाहिए, तो अंदर संघर्ष चलता रहता है। तो बुद्धि क्या है, एक तराजू की तरह भी है जिसमें तीन चीजें हैं। एक है कांटा जो सीधा होना चाहिए, वर्टिकल। दूसरी है डंडी, वो भी सीधी चाहिए और पलड़े समान चाहिए। तो वर्टिकल डंडी माना आपका मन एकाग्र चाहिए, तभी बुद्धि सही काम करेगी। मन एकाग्र चाहिए, बुद्धि समतल चाहिए, यानी मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहने का लक्ष्य हो, हिले नहीं, हा ना हा ना हा ना, असमंजस में मत आओ। अंतरात्मा की जो आवाज है वो ही सही आवाज है। और पलड़े माना आपके मूल्य, आपके मूल्य, मूल्यों को महत्व दो। जैसे तराजू वजन को ही महत्व देता, बाकी और कुछ नहीं बताता कितना वजन है। तो बुद्धि मूल्यों को मूल्य देती है और उसको उजागर करो, तब आपकी बुद्धि सही चल रही है। बुद्धि फिर मन को दिशा दे, मन इंद्रियों को वश में रखे, नहीं माना नहीं, ये आपकी ब्रेक बन जाए, आपको कई गलत कामों से बचाएगी। और जब बुद्धि को समझ लिया, फिर संस्कार को समझना मुश्किल नहीं है। जो हम कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड बन जाता है, ये भूले नहीं। आपका कोई भी कर्म कहीं भी नष्ट नहीं हुआ, आपके पास ही है, वो रिकॉर्ड है और वही समय पर वापस प्रकट होता है, भाग्य के रूप में आपके रिकॉर्ड में आ गया, आएगा समय पर। इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि वही आपका भाग्य बनेगा, वही आपका संस्कार बन जाएगा। अब आत्मा के अस्तित्व के भी कुछ प्रमाण है। कई कहते हैं सब कैसे माने, ये माना समझ नहीं पाते आत्मा का अस्तित्व कैसे हम माने। कई छोटे छोटे बच्चे पूर्व जन्म की स्मृतियों के आधार से उनकी प्रतिभा निखरती है बचपन में। कैसे बचपन में इनकी प्रतिभा निखरती है, क्योंकि पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर के आए हैं। इसका बहुत विस्तार है आपका, आप अनुभवी हैं इन बातों की। दूसरा है कि कई ऐसे अपना अनुभव सुनाते हैं कि जैसे ये हम मर गए थे और मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था और फिर वापस आ गया, ऐसे अनुभव हुआ। ये आत्मा मन की आंख से अपने शरीर को देख सकती है, सब दृश्य देख सकती है, फिर वापस भी आ गए। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कहते हैं इसको। और तीसरा है सम्मोहन के द्वारा भूत या भविष्य को जानना। आजकल मेडिकल साइंस में सम्मोहन को बहुत यूज कर रहे हैं, पिछले जन्मों में ले जाते हैं। और कई ऐसी यादें हैं पिछले जन्मों की जो भूलती नहीं और पता भी नहीं क्यों, तो उसको नष्ट कर सकते हैं। ये अब ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप है। परंतु एक बात हमें इससे प्रूफ मिलता है कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, इसमें आत्मा का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। अब आत्मा कहाँ है शरीर में? यहाँ कहते हैं भ्रकुटी के मध्य चमकता एक अजब सितारा, जहां स्त्रियां तिलक लगाती है या तीसरा नेत्र दिखाते आज्ञा चक्र कहते हैं, ये आत्मा का स्थान है। आत्मा का एक अगर अकाल तख्त कहें तो ये गलत नहीं होगा। अकाल आत्मा जो कभी मरती नहीं, इस तख्त पर विराजमान होकर शरीर की इंद्रियों को चलाती है, क्योंकि मस्तिष्क उसका कंट्रोल रूम है। पर कंट्रोलर कौन है? वो आत्मा है। और जैसे मैंने सोचा मैं एक आत्मा हूं, इन आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं, इन हाथों से कर रही हूं, अब मैं चाहूं तो कंट्रोल करूं, क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती हूं? अगर मैं कहती हूं मैं देखना तो नहीं चाहती थी पर पता नहीं कैसे देख लिया, ये हाथ चलाना तो नहीं चाहती थी पर पता नहीं कैसे हाथ चल पड़ा, इसका मतलब क्या है? हाथ ज्यादा वो मालिक है या आप मालिक हो? इसका मतलब हाथ मालिक हो गए ना। मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए थे, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया। फिर बाद में कहेंगे सॉरी सॉरी मेरा भाव ये नहीं था। अरे भाव नहीं था तो बोला ही क्यों? बोला तो जरूर सोचा भी तो होगा ना, बिना सोचे ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कौन हूं ये समझने के लिए आत्मा के मूल गुणों को पहचानो। मैं क्या हूं? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। कहा जाता है जो बाहर से आता है वो सूचना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आजकल बहुत फैला हुआ है। हर एक सोचता है मैं आईटी करूं आईटी करूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया भर की बातें आपके इंटरनेट से आपको मिल सकती है, वो सब इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंदर से आता है, जो बाहर से आया वो इंफॉर्मेशन, जैसे भोजन बाहर से आया पर वो भोजन हजम होना चाहिए तब वो भोजन काम का है। अगर हजम हुआ ही नहीं, उल्टी हो गई, डायरिया हो गया, तो वो भोजन खाया न खाया बराबर है। वो हजम होना चाहिए, ब्लड में जाना चाहिए, तब ताकत आएगी। तो जो अंदर से आया वो शक्ति है, वो ज्ञान है। ज्ञान एक शक्ति है, खाली इंफॉर्मेशन शक्ति नहीं है। इसीलिए ज्ञान, हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है। हर बच्चा जानता है मुझे सच बोलना है। बच्चे को सच बोलना सिखाया नहीं जाता है, वो सच ही बोलेगा। पर हाँ, झूठ बोलना सिखाया जा सकता है नहीं? पर उस झूठ में भी सच बोल सकता है वो, क्योंकि सच्चा है ना बच्चा। तो हम लोग सुनाते हैं, फोन आया, बच्चे ने उठाया फोन, टेलीफोन, कौन है? फेंगा फलाना। जाओ डैडी है? कहता अभी बुलाता हूँ। डैडी के पास गया, डैडी फलाना आपके लिए फोन है। कौन है? फलाना है। अब डैडी को मिलना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी है। तो डैडी कहेगा उसको, बोलो डैडी घर में नहीं है, डैडी घर में नहीं है। तो कहेगा डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। समझ गए ना? अब कहा तो डैडी नहीं ना, कि कहो मैं घर में नहीं हूँ, तो डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? बच्चे ने तो सच बोला और पिता ने झूठ बोलना सिखाया। हंसी आती है अभी, पर करते तो होंगे ना कि नहीं करते हैं? जरूर। तो क्या है, हर आत्मा अपने असली स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अंतर आत्मा की आवाज मना, वो ज्ञान अंदर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नहीं क्या करना, करना क्या है, सब पता है। इसलिए जब भी गलत काम किया मन खाता है, गिल्टी कॉन्शियस फीलिंग्स आती है, क्योंकि सफेद कपड़े पर दाग लग गया। लगता है दाग। तो आत्मा जब ये समझे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं उसके बाद समझूंगी मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में शुद्ध है, जैसे सच्चा सोना है। तो जैसे मैंने ये चिंतन किया मैं शुद्ध स्वरूप हूं, तब शांत स्वरूप भी हूं। पवित्र विचारों से ही शांति आएगी, बिना पवित्र विचारों के शांति अनुभव कभी नहीं होगी। कई कहते शांति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र विचार नहीं है, ये समझ लो, इसलिए नहीं है शांति। शांति तो मन की स्थिति है, पवित्र विचार लाओ शांति मिलेगी आपको। पवित्रता शांति की जननी है, और जहां शांति है वहीं प्रेम है। प्रेम के ये ढाई अक्षर पढ़ाने नहीं पड़ते, आधा प आधा र, ये म, ये प्रेम होता है, ये पढ़ाना नहीं पड़ता है। इसलिए कबीर ने कहा, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लो वही पंडित है। माना ये पंडित बनने के लिए ढाई अक्षर ये लिखने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आ जाए वही प्रेम है। क्योंकि हर आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रेम स्वरूप है। प्रेम मांगा नहीं जाता है, प्रेम दिया जाता है। आपके पास है, बांटो सबको, बहुत है आपके पास। कैसे बांटेंगे? अपनी सोच के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। मांगो मत कोई प्रेम करे, कोई प्रेम करे। भिखारी हो क्या आप? हो दाता हो आप, उसी का स्वरूप हो। अब बांटो, दो तो मिलेगा। और जहां प्रेम है वहीं सुख है, और जहां सुख है वहीं आनंद है। आनंद ये आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन लोगों ने इस शब्द को बड़ा भौतिक बना दिया है। कोई चटपटी चीज खाली कह दिया, वाह वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया खाकर। आनंद क्या आया? ये जीभ को थोड़ा रस मिला, अंदर तो पता नहीं क्या जला डालेगा आपकी अंतड़ियों को, पता भी नहीं चलेगा आनंद क्या आया। आनंद तो आध्यात्मिक शब्द है, इसलिए जितने भी धर्मात्माएं, संत साधु महात्माएं, उनका जो नाम होता है उसमें आनंद शब्द आता है। सच्चिदानंद स्वामी, धर्मानंद, प्रेमानंद, विवेकानंद, सत्यानंद, आत्मानंद, आनंद। आनंद किसका? आनंद सत्यता का, आनंद प्रेम का, आनंद शांति का, आनंद। और सबसे ऊंचा आनंद कौन सा है? परमानंद, परमात्मा का आनंद। और उस आनंद की भेंट में ये इंद्रियों का आनंद सब फीका, सब फीका। और वो जब परमात्म आनंद मिल जाए तब आत्मा शक्तिशाली बने। ये अंदर से अनुभव होगा, जिसको हम विल पावर कहते हैं। ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। इन ओरिजिनल संस्कारों को कैसे अनुभव करेंगे? चिंतन के माध्यम से। इसलिए कहते हैं आप जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते हो मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं देगी, न दे सकेगी, भगवान भी नहीं दे सकेगा। वो शांति देना भी चाहेगा आपके दरवाजे बंद है, मैं तो अशांत हूं। फिर आप अगर ये सोचेंगे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकती। ये चैलेंज है। इसीलिए ये आत्मा के सात मूल गुण हैं। सफेद रंग में सात रंग होते हैं, ये सात रंग से ही बनता है सफेद। सफेद सात रंग देता है। तो ये सात गुण ही आत्मा का स्वरूप है। इसलिए मैं आत्मा ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति स्वरूप हूं, ये चिंतन करो। ये पहला कदम है राजयोग का। इसलिए आपसे जोर से बुलवाया, ओम शांति बोलो। खाली बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की भी बात है। ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ म। व ही मैं, व हूं मैं। तो कौन हूं मैं? शांति। मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। मैं वही हूं जिसका धर्म ही शांति है। मेरा धर्म शांति। आत्मा का धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो तो शरीर के धर्म है। आत्मा का धर्म शांति है। हर एक शांति चाहता है, सोचे कि एक धर्म वाले चाहते हैं। इसलिए मैं वो आत्मा हूं जिसका स्वधर्म शांति है, और मेरा जो असली धाम है वो शांति का धाम है। जब मन अशांत हो जाता है, हम कहते हे भगवान बस बुला लो मुझे, नहीं जीना है जीवन में, संसार में जीना नहीं, मुझे बुला लो। क्यों आत्मा परमात्मा को कहती है बुला लो? जैसे होम सिक हो जाती है, कोई को अपना घर बहुत याद आता है ना, बहुत लंबा टूर किया तो घर नजदीक जब आता है तो बहुत याद आता है। तो आत्मा उस घर को याद करती है जो उसका शांति का धाम है। हर आत्मा उसी धाम की वासी है, जिस धाम से हम इस संसार में आए हैं, जिसको हम निराकारी दुनिया मूल वतन कहते हैं, परमात्मा को त्रिलोकी नाथ कहते हैं, तीन लोकों का वो नाथ है, निराकारी लोक, आकारी लोक, साकारी लोक। इसका और विस्तार आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज हम उस लोक की बात करेंगे जहां मन से हमें जाना है। भगवान को ये मत कहो हे भगवान उठा लो मुझे, वो तो जब समय आएगा आत्मा को शरीर छोड़ने का, आत्मा शरीर से पूछेगी भी नहीं कि मैं जाऊं, एक सेकंड में उड़ जाएगी पंछी बन के, पूछेगी भी नहीं, हिसाब किताब पूरा हो गया आत्मा का शरीर के साथ। लेकिन मन से आप जब चाहो जा सकते हो उस घर में, जब चाहो मन की आंख से उस धाम को एक सेकंड में देख सकते हो, उस परम धाम को, अखंड ज्योति का वो महतत्व है जिसको ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, मूल वतन, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम आदि नामों से याद करते हैं। तो मन से उस धाम में पहुंच जाओ, उस धाम को याद करो। तो क्या आपने सुना आत्मा का परिचय, मैं कौन हूं? एक आत्मा हूं, रूह हूं, ज्योति हूं, जो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप हूं। ये मेरा टेम्पररी घर है, अकाल तख्त, ये तख्त मेरा शरीर में तख्त है, तख्त तो मिट जाएगा लेकिन मैं तो अकाल हूं, कभी काल नहीं खाएगा मुझे, और मेरा परमानेंट घर परमधाम है। आपके परिचय पत्र में दो कॉलम्स आते हैं, एक आपका प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो आत्मा का प्रेजेंट एड्रेस ये है और परमानेंट एड्रेस, और आत्मा क्यों आई इस संसार में, इस विश्व रंग मंच पर एक्टर बन के एक्टिंग करनी है, क्योंकि आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार हैं। वो शरीर चाहिए, प्रकृति चाहिए, रंगमंच चाहिए, तभी तो वो कला कर्म करने की प्रदर्शित कर सके। अब ये समझने के बाद आत्मा अपना चिंतन करती है, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, और नहीं मैं अभिनय हूं, पिता हूं, माँ हूं, बेटा हूं, भाई हूं, बंधु हूं, सखा हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर, ये सब मैं नहीं हूं, ये तो अभिनय है। अभिनय अलग चीज है, एक अभिनेता का अभिनय अलग अलग होगा हर फिल्म में, पर उसका असली परिचय क्या है वो तो अलग होगा ना, कि वो अभिनय वाला है वही उसका परिचय है, नहीं ना? तो ये सब अभिनय हम कर रहे हैं, जो अलग अलग रोल बजा रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनेता हूं। मैं शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूं। अब साक्षी होके देखो सारे दृश्यों को, सब आत्माएं बैठी है अपने अपने शरीर रूपी या भ्रकुटी के सिंहासन पर बैठी है हर एक आत्मा, और उस रूप से इस दृष्टि से देखो तो आपकी आंखें भी पवित्र हो जाएगी और इससे नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे, सहज उनको रोक सकते हो, और अपने अंदर सकारात्मक विचारों को लाओ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। बुद्धि द्वारा मन को दिशा दो परम धाम की तरफ, और जैसे हम ये सोचना आरंभ करेंगे हमारा मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि कैसे मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ। तो सीधा बैठेंगे, आंखें खुली रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वातावरण से भी आप शक्ति ले सकते हैं। और सामने जो आपको यह रूहानी ड्रिल करा रहा है उनसे भी आप शक्ति ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। इसका फिर विस्तार आपको शाम को बताएंगे। अभी अंतर चक्षु को खोलिए, अपने इस देह में विराजमान मैं आत्मा को पहचानूं। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? अंतरात्मा उत्तर देगी, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का स्वरूप मन पटल पर लाइए, मैं कैसी आत्मा हूं? ज्योति बिंदु आत्माओं, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, अति प्रकाशमान हूं, अति शुद्ध हूं, पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, इस शरीर से भिन्न, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर सृष्टि मंच पर अभिनय कर रहा हूं। मुझ आत्मा ने भिन्न भिन्न वस्त्र देह के धारण किए, भिन्न भिन्न अभिनय किए, पर मेरा मूल स्वरूप एक दिव्य ज्योति है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। इस शरीर से पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहूंगा। शरीर के विनाश के साथ मेरा विनाश नहीं होता। मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे वायु सुखा नहीं सकता, मुझे तलवार काट नहीं सकती। मुझे पानी भिगा नहीं सकता। इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूं। मेरा असली धाम पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद सितारों के प्रकाश से भी दूर एक ज्योति का धाम है। अखंड ज्योति ब्रह्म महतत्व मुझ आत्मा का अविनाशी धाम है। मन बुद्धि से उसी धाम में पहुंच जाओ। एक सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त है और इस प्रकाश के मध्य मैं आत्मा अति सुंदर अति शुद्ध अति शक्तिशाली चमक रहा हूं। मैं पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। इस शांति के धाम में चारों ओर शांति ही शांति है। पवित्रता ही पवित्रता है। कितनी आत्मीयता है। यहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। प्रकृति का बंधन, दुखों का बंधन, कर्म का भी बंधन से परे हूं। स्वतंत्र हूं, शांत हूं। एक दिव्य शक्ति हूं। अब इसी शांति की शक्ति को स्वयं में समाकर वापस लौटे, फिर से साकारी दुनिया में, फिर से अपने शरीर में, फिर से अपने अकाल तख्त भृकुटी पर विराजमान हो जाइए। आपने अपने धाम की यात्रा की और उस परम शांति का सुखद अनुभव किया। अब उस शांति को अपने में समाये रखें और फिर से कर्म में आए। तो आपके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, कुशल होंगे, सफल होंगे और आपका जीवन एक सुंदर जीवन बन जाएगा, सार्थक जीवन बन जाएगा और जन्म जन्म भी आपके सफल होंगे। यही राजयोग की सर्वोत्तम प्राप्ति है।